ओम शांति। बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आप गुजरात के काफी पार्ट्स से अपने आदरणीय निमित बहने बहन भाई सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपने ये सौभाग्य लिया है कि अगर भट्टी का चांस मिलता है तो इसे मिस ना किया जाए, जोखिम उठाकर भी आप चले आए। और मैं समझती हूँ कि उस जोखिम से बचने के लिए आप सभी प्रिकॉशन जो बताए गए हैं उसके अनुकूल चलते हुए अपना बचाव अवश्य करते रहेंगे। ये प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों के लिए भट्टियों का कार्यक्रम रखा, हम सब समझते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय गोल अथवा लक्ष्य क्या है, जिसे हम सब प्राप्त करने के पुरुषार्थ में चल रहे हैं। लेकिन एक होता है लक्ष्य, एक होता है लक्ष्य को प्राप्त करने का मेरा निजी पुरुषार्थ। मेरे निजी पुरुषार्थ में लक्ष्य तक पहुंचने में देरी ना लगे, एक फास्ट स्पीड से चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर मंजिल पर पहुंच सके, उसके लिए विशेष इस प्रकार के भट्टियों का आयोजन किया जाता है। जब प्यारे बाबा अव्यक्त हुए तो उनके अव्यक्त होने पर भट्टियों के कार्यक्रम बहुत तेजी से शुरू हुए थे और उन भट्टियों में विशेष रूप से सभी को मौन व्रत रखा गया था कि जब तक हम अपनी अंतर्मुक्ता की गुफा में विराजमान नहीं रहेंगे तब तक आंतरिक शक्तियों को हम ना तो अनुभव कर सकेंगे और न अंदर से ईश्वरीय संबंध का सुख प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ईश्वरीय सुख को प्राप्त करने के लिए हम बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता की तरफ चलें। कोई किसी से बातचीत नहीं करता था। मुझे आभास होता है उस समय का कि हम कहते हैं कि दीवारों को भी कान होते हैं। कोई भी बात कहीं छुपकर भी करता था, वे बात भी हमारी आदरणीय दादियों तक पहुंच चुकी होती थी और वो बुलाकर के संकेत देती थी कि भट्टी के दरमियान इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। आश्चर्य खाते थे सभी कि इनको पता कैसे चला, जबकि हम कमरे में खड़े केवल दो ही थे और दोनों ने आपस में बात की, तीसरा कोई था ही नहीं, ये बात वहां तक पहुंची कैसे। लेकिन कोई भी चीज रहती नहीं है, चली जाती है, कैसे भी चली जाती है। अब उसकी छानबीन में जाए तो इससे क्यों नहीं अंतर्मुखी बनकर अपनी योग तपस्या को बढ़ाएं। तो मैं आज एक बात अपने भाइयों की क्लास में सुना रही थी जो आपको भी सुनाना चाहती हूं कि जब हमारे यज्ञ की शुरुआत हुई उस शुरुआत में केवल मात्र ओम की धुन लगती थी और उस ओम की ध्वनि में सभी शांत होकर बैठ जाते थे और बड़ी गहरी शांति का अनुभव करते थे। और ऐसा भी समय था कि उस समय कई दिव्य साक्षात्कार भी उनको हुआ करते थे, केवल मात्र इस ओम की शांति की धुन के आधार से, क्योंकि बाहरी वार्ता से, वातावरण से और वार्ता से जब आत्माएं अंतर्मुखी हो जाती हैं और केवल उसी शब्द का संबोधन करते हुए उसी शब्द के स्वरूप में स्थित होती चली जाती हैं, तो बहुत सुंदर अनुभूतियां होती हैं। और जब कोई नए लोग उस समय यज्ञ में आते थे तो हमारी दो दादियां बाहर खड़ी होती थी गेट पर, और आने वालों को इन शब्दों से संबोधित करती थी, आओ मम आत्मा आओ, हे मेरी आत्मा, हे मेरे प्रिय बंधु आओ। आप सोचिए, गेट पर ही जिनको अपनत्व की महसूसता करा दी जाए, उन्हें अंदर आना कितना अच्छा लगता होगा, और बड़े प्यार से उन्हें स्वीकार करते हुए अंदर विराजमान होते थे। कोई अन्य शब्द का संबोधन नहीं होता था। फिर कुछ समय के पश्चात दृष्टि का चला, और दृष्टि से ही मिलन होता था। बाबा मामा से दृष्टि लेते, दादियों से दृष्टि लेते, आपस में दृष्टि लेते, और जब स्थानांतर हुआ पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, उस समय दृष्टि का बहुत महत्व इतना ज्यादा फैल गया कि जिसने ब्रह्मा कुमारी की आंखों की तरफ देखा, उसको नए निराले साक्षात्कार होते हैं। और साक्षात्कार भक्ति मार्ग में माना गया है कि सुलभ साधन नहीं है, ये बड़े कठिनाई या बहुत भक्ति की तपस्या के पश्चात ही होता है। तो कोई इसको जादू कहकर पुकारने लगे, लेकिन दादियों से दृष्टि लिए बिना जो नियमित विद्यार्थी होते थे वो कभी इधर से उधर नहीं होते थे। जब तक दृष्टि न ले लें तब तक समझते थे कि हमारा बड़ों से मिलना हुआ नहीं। और गा की स्थिति में इतने समय रह चुकने के कारण उनके नैनों में सचमुच योग का वो जादू था, जो दृष्टि देते ही आत्मा शांत चित और अपने निजी स्वरूप का बहुत सुंदर अनुभव करती थी। ऐसे कहीं भी रास्ते में कोई मिल जाए तो दो क्षण खड़े होकर एक दो को दृष्टि देते थे, कुछ शब्द उच्चारण नहीं होता था। और जब लोगों में ये फैल गया कि इस दृष्टि से जादू होता है, तो कई लोगों ने दृष्टि लेना बंद कर दिया। वो कोई नियमित विद्यार्थी नहीं, लेकिन जिनको ये मालूम था कि योगी की दृष्टि बहुत सुखकारी होती है, इसलिए सुखों को प्राप्त करने के लिए वे दृष्टि लेते थे। लेकिन जब बार बार इस बात का समाचार सुनता है मनुष्य कि जादू होता है, तो दृष्टि लेना बंद किया। उस समय मुझे याद है कुछ भाइयों ने ऐसा सजेशन दिया अपने परिवार में आपस में कि हमें कुछ अन्य शब्द का उच्चारण मिलते हुए करना चाहिए, केवल दृष्टि का आदान प्रदान ना हो। तब बाबा ने ये शब्द दिया था, ओम शांति। उस समय ओम शांति शब्द हमारा आपस में मिलने पर संबोधित होने लगा। जब भी कोई एक दो को मिलते, जैसे आज तक भी ओम शांति शब्द ही कहते थे। इस समय हम ऐसा समझते हैं कि समय ऐसा आ गया, ओम शांति के साथ दृष्टि योगी की लेना एक सौभाग्य समझते थे कि योगस्थ स्थिति वाली आत्माओं ने हमारी को दृष्टि दी, ये बहुत बड़ा भाग्य है। और आज भी बाबा के योगी कई बच्चे राह चलते भी कहेंगे, दीदी एक मिनट दृष्टि दे दीजिए। दृष्टि का इतना महत्व रहा, लेकिन कुछ वर्तमान समय नई नई आत्माएं जब ज्ञान में आई, तो उन्होंने योग के दृष्टि का इतना महत्व नहीं समझा। अगर उनको कोई योगस्थ स्थिति में स्थित होकर योग की दृष्टि देता भी, तो वो अपनी नजर नीचे करते या ऊपर करते या दाएं या बाएं या सामने चित्र को देखते, लेकिन योगी की दृष्टि नहीं देते, क्योंकि उन्हें योग का महत्व नहीं पता चला। और आज आप समझते, एक समय आ चुका है कि मेडिकल रूप से ये अनाउंस किया गया कि आज जो COVID-19 फैला हुआ है, दृष्टि से भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का भय है, इसलिए ना ज्यादा दृष्टि दो और ना दृष्टि किसी से लो। चलो आप नहीं लेते तो ना सही, गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से ये अनाउंस हो गया। मैं भी बैठी थी, मैं दृष्टि नहीं दे रही थी, लेकिन बाबा ने जो ये लेसन प्रारंभ में दिया और अंत तक ये कहा, मस्तक चमकती हुई उस मणि को देखो तो मुराद हासिल होगी, देह को देखोगे तो सांप का विष चढ़ जाएगा। इसलिए मस्तक में चमकती हुई एक दो को मणि देखते हैं और स्वयं आत्मा स्वरूप में स्थित होकर दूसरे को भी आत्म स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं कि मैं भी आत्मा हूं और आप भी आत्मा ही हैं। और आत्मा दृष्टि से एक अपनत्व की भावनाएं आती हैं, अपने हैं, उसमें अच्छाई और बुराई किसी की किसी प्रकार की भी किसी के चित पर आकर नहीं बैठती है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र और शांत है। जब मैं स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा की निगाह से देखती हूँ कि ये भी चमकता हुआ एक सितारा है, पवित्र शांत शुद्ध आत्मा है, तो समय छोटा बड़ा, गरीब अमीर, दुर्गुण गुण, इन बातों की भावनाएं नहीं रहती हैं। सब अपनेपन की भावनाएं और पवित्र भावनाओं का संचार होता है। तो आज कम से कम बाबा के ये महावाक्य तो कायम हो गए कि एक दो को दृष्टि में ही देखो, दृष्टि से ब्रकुटी के मध्य ही देखो, चमकते हुए दिव्य सितारे को देखो और स्वयं ब्रकुटी में निवास करने वाला मैं दिव्य चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्मृति के अभ्यास को परिपक्व करो। क्योंकि हम सबको मालूम है कि जब हम उसी धाम के वासी हैं, जिस धाम में हमारे बाबा रहते हैं, और उसी धाम से हम इस साकार सृष्टि मंच पर आए हैं, फिर हमको उस धाम की और धाम के वासी की याद क्यों नहीं रहती? कारण क्या हो गया? कुछ तो कारण हुआ ही है। तो बाबा भी हम बच्चों को सुनाते भी हैं और हम भक्ति मार्ग की कई गाथाएं सुनते हैं। यही कहते हैं कि कहानी सुनाते हैं कि कृष्ण और सुदामा भक्ति की कहानी है, लेकिन हम उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। दोनों आपस में मित्र थे, एक समय एक ही क्लास में पढ़ते थे। कहते हैं श्री कृष्ण के और सुदामा के आपस में इतनी मित्रता थी कि दोनों सदा मिलकर ही चलते थे। और पहले अंगोछा एक ऐसा लंबा सा होता था जो हर बच्चा कमर अपने कंधे पर डाल के रखता था। ये बच्चे भी गांव के दिखाते हैं और कंधे में अंगोछा होता था। एक बार सुदामा की मां ने सुदामा को कुछ चावल चने दे दिए कि जब छुट्टी हो गई, रिसेस हो गई, तो दोनों मिलकर इन चनों को खा लेना। कहते हैं छोटे बच्चे होने के नाते एक पेड़ की टहनी पर दोनों बैठे हुए थे और सुदामा को जो मां ने चने दिए थे वो चने खा रहा था, लेकिन मुंह पर अंगोछा रखा हुआ था। परंतु चने की आवाज कड़कड़ की तो अवश्य आएगी ही, और जब वो कड़कड़ की आवाज आ रही थी तब कहते श्री कृष्ण ने पूछा कि सुदामा ये आवाज क्या आ रही है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था। तो सुदामा ने कहा कि ठंडी बहुत है, दांत कटकटा रहे हैं। अब इस गाथा में ऐसा स्पष्ट करते हैं कि ये छोटा सा झूठ सुदामा ने श्री कृष्ण के साथ किया और इस झूठ का परिणाम कि एक सुदामा दरिद्र बन गया और एक श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गया। दोनों में इतना अंतर हो गया। आज हम भी देखते हैं कि हम भी प्यारे बाबा के साथ परमधाम में रहने वाले थे, एक ही घर के वासी थे, एक जैसा ही हमारा स्वरूप था, एक जैसे ही हमारे गुण थे, लेकिन इस साकार मंच पर आकर के हमने सबसे बड़ी भूल कर ली कि अपने स्वरूप को विस्मृत होकर स्वयं को देह समझना शुरू कर दिया। और इस छोटी भूल को जिसको कहते एकज भूल, एकज का अर्थ है वो भूल जो अनेक भूलों को जन्म देती, ये वो भूल थी जिस भूल ने अनेक भूलों को जन्म दिया और हमारे जीवन में विकृतियां और विकार आने शुरू हो गए और हम आत्माएं धीरे धीरे नीचे गिरती चली गई। और प्यारे बाबा जब आए हम बच्चों को वापस घर ले चलने के लिए, क्योंकि हम यहाँ व्याकुल हो गए, दुख परेशानी की दुनिया में रहना नहीं चाहते, यही कहते चले गए भक्ति में कि हे भगवान तुम अपने पास हमको बुला लो। साधना जप तप करना शुरू किया, मुक्ति में चले जाएं और इस साकार दुनिया के बंधन से छूट जाएं। तब ऐसी आवाज सुनकर स्वयं भगवान धरा पर आते हैं और धरा पर आकर उन्होंने सबसे पहला संदेश ही क्या दिया कि बच्चे तू कौन है, तू ये नाशवान चोला नहीं है, इस चोले के कारण तेरा और मेरा संबंध या रिश्ता टूट गया है, जो तुझे मेरे द्वारा प्राप्तियां प्राप्त होनी थी उन प्राप्तियों से तू वंचित हो गया है। और आप हम सब ने सुन रखा है कि जब ब्रह्मा बाबा को ये मालूम पड़ा कि नाशवान मैं देह नहीं आत्मा हूं, तो बाबा ने आत्म स्वरूप की स्मृति का कितना अभ्यास किया और बाबा के अभ्यास का ये परिणाम था कि बाबा के अपने ही लौकिक बच्चे बाबा को समझ नहीं पाए, यही कहते थे कि हमारा बाबा भगवान हो गया है। वो लौकिक पिता की महसूसता बच्चों के अंदर से भी समाप्त हो गई। पत्नी जो भक्ति काल में बाबा को जैसे पति परमेश्वर कह के पत्नियां चलती थी, वो परमेश्वर की भावना समाप्त हो गई और ये आत्मा उस सर्वशक्तिवान की संतान है। इस निगाह ने उनके संबंध की भावनाओं को बदल दिया। ये पुरुषार्थ बच्चों का नहीं था, पत्नी का नहीं था, लेकिन ये पुरुषार्थ बाबा का था और यही पुरुषार्थ बाबा ने बच्चों को कराया कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझो। मुझे याद आता है जब मैं ज्ञान में चली, कुछ दिन अभी हुए थे, कुछ दिन न कह के कुछ मास कहेंगे, हमको बाबा ने पूछा क्लास में एक बार कि बच्चे कितनी देर तुम स्वयं को आत्मा समझती हो, तो मैंने उत्तर दिया बाबा सारा दिन मैं आत्मा समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि देह से आत्मा भिन्न है और मैं कहने वाली आत्मा है, शरीर नहीं है। तो बाबा ने मेरे शब्दों को सुनकर ये कहा कि अच्छा कल आना और बाबा को बताना कितनी देर तुमने स्वयं को आत्मा समझा। इससे पूर्व बाबा ने मुझे ये बात बता दी कि कल जब बाल्टी भरना स्नान करने जाने के लिए, क्योंकि पहले बाथरूम में नल नहीं हुआ करते थे, बाहर नल से बाल्टी भर के अंदर बाथरूम में रखते थे, तो बाबा ने कहा इन हाथों रूपी नौकरों के द्वारा काम लेना, बाल्टी भरना और इसको ऑर्डर देना, उठाओ बाल्टी चलो अंदर रख दो। ये हर समय के तुम्हारे सेवाधारी हैं, हर कर्म इंद्रियां। ऐसे स्वामी बनकर इनसे काम लेना। खाना खाना तो यही समझना कि ये गाड़ी है शरीर, इस गाड़ी को जैसे पेट्रोल डालते हैं ऐसे ये भोजन एक पेट्रोल है। इस गाड़ी को इस भोजन रूपी पेट्रोल की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना पेट्रोल इसमें डालना। लेकिन याद रखना आसक्ति खाने में, ज्यादा खाना या स्वाद के वशीभूत होकर खाना ऐसा ना हो। लेकिन जो जरूरत है गाड़ी को वो देना। स्नान करना तब भी बाबा ने कहा गाड़ी को तुम स्नान करा रही हो, साफ कर रही हो, ये समझना। तीन चार बातें बाबा ने मुझे कह दी और कहा कि कल आना तो बाबा को, बाबा आपसे पूछेगा कि कितनी देर आपने अपने को आत्मा समझा। मैंने बाबा की इस बात को बहुत स्मृति में रखा, लेकिन दूसरे ही दिन मैंने अनुभव किया कि पानी भरने से पूर्व मुझे कुछ क्षण तो याद आया, लेकिन पूरा टाइम उसके पश्चात मैं विस्मृत हो गई कि ये बाल्टी को भरकर मुझे नौकरों के द्वारा, ये सर्वेंट है कर्म इंद्रियां, इनके द्वारा मुझे उठवाकर इसको अंदर ले जाना है। स्नान के प्रारंभ लोटा डालने पर याद आया, लेकिन उसके पश्चात भूल गया। ऐसे भोजन खाने के कुछ क्षणों के मध्य में थोड़ा सा याद आया, फिर विस्मृत हो गया। तब मुझे बहुत आया कि बाबा को तो मैंने कहा है कि मैं सारा दिन अपने को आत्मा समझती हूँ, अगर बाबा ने मेरे से पूछा तो मैं बाबा को क्या बताऊंगी। लेकिन क्लास पूरी हो गई, हम बच्चे बाहर चले गए, बाबा भी अपने कमरे में चले गए, बाबा ने पूछा नहीं। मुझे बहुत खुशी रही कि अच्छा है मुक्ति हो गई, पूछा नहीं, अगर पूछते तो मैं क्या बताती। लेकिन टीचर तो टीचर है, वो ऐसा नहीं कि घर में बच्चों का पिता है, पिता के साथ टीचर का रोल भी अदा करता है। ऐसे ही दोपहर का समय था, बाबा बाहर चक्कर लगा रहे थे और मैं भी इधर से निकलकर जा रही थी, तो साकार बाबा ने मुझे इशारा करके बुलाया, इधर आओ बच्चे। मैं बड़ी खुशी खुशी गई, मुझे नहीं मालूम था कि क्लास के बाद भी टीचर का काम चलेगा। सोचा अब तो स्वतंत्रता हो ही चुकी है, लेकिन मुझे बुलाकर बाबा ने पूछ ही लिया कितनी देर अपने को आत्मा समझा। मैं बहुत संकुचित हुई बात को सुनते हुए, प्रश्न बाबा का। तब मैंने बाबा को कहा, बाबा बहुत थोड़ा समय। तब बाबा ने यही मुझे कहा कि बच्चे ये बहुत लंबे काल के अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत समय से स्वयं को देह समझने का जो संस्कार बन चुका है, उस संस्कार को बदलना और आत्मनिष्ठा की स्थिति में स्थित रहना और बार बार स्वयं को स्वरूप की स्मृति में रखना, इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तुम बच्चों को यह अभ्यास करना चाहिए। और आप सब ने बाबा के महावाक्य कई बार सुने होंगे कि नेत्रों द्वारा मैं देखने वाली आत्मा हूँ, मुख द्वारा मैं बोलने वाली आत्मा हूँ। आज नए नए लोग भी आते हैं, हम उनको भी सुनाते हैं, लेकिन स्वयं से स्वयं पूछें, ये सुनाने तक तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कितना समय हम आत्मा समझ कर चलते हैं। और सचमुच बाबा की ये बात की तो आत्मा है, अगर आत्मा अपने स्थायी स्वरूप में, अपने आत्म स्मृति की स्थिति में स्थित हो जाए, तो जो आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, मूल संस्कार है, उन संस्कारों को लाने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो संस्कार स्वतः ही आएंगे, क्योंकि वो नेचुरल संस्कार है। लेकिन हमने जो नेचुरल रूप नहीं है, जो केवल मात्र टेम्पोररी चोला लिया है, इस स्मृति में ज्यादा रहते हैं और अपने नेचुरल स्वरूप की स्मृति को विस्मृत हो चुके हैं, इसलिए दैवी संस्कार श्रेष्ठ संस्कारों को लाने में हमें मेहनत लगती है। कितना भी बाबा कहे अंतर्मुखी रहो। कल ऐसे ही अचानक की छोटी सी बात ही सुनाती हूँ। 4:15 का टाइम होगा, कोई गुजरात से ही ग्रुप आया था, कुछ बहनें थी, टीचर्स भी थी, इतनी जोर जोर से बोल रहे थे जितना गले का वॉल्यूम खुल सकता है उतना खुला हुआ था। सब सोए हुए चाहे जाग जाएं, लेकिन उनकी बातचीत बड़ी जोरों से चल रही थी। आप सोचिए, हम भट्टी करने जाएंगे अगर हमारा कुछ समय पूर्व का यह अभ्यास नहीं होगा कि हमें कम से कम आवाज से कम बोलना है, तो हम अचानक तो नहीं उस अभ्यास में परिपक्व हो सकते। कोई भी चीज को बनाए रखने के लिए कुछ लंबे समय के अभ्यास की आवश्यकता होती है, और हमारी वो आदतें बनी हुई हैं जोर से बोलने की। हमने देखा हमारी मामा, कभी हमने जोर से बोलते मामा को नहीं देखा। आज कहते हैं वो सुनते नहीं है ना, इसलिए जोर से बोलना पड़ता है। हमने उनको आदत डाल दी है कि हम जोर से बोलेंगे तब वो हमारी आवाज सुनेंगे, और मामा ने ये आदत नहीं डाली। मामा बहुत धीरे और बड़े प्यार और मिठास से बोलती थी, और मैं देखा कि दूसरे कमरे में भी अगर मामा ने आवाज लगाई तो मामा की आवाज वो सुन लेते थे, क्योंकि ऐसी मधुर आवाज जो मैं वैसे बोलने में कहूंगी यहां भी नहीं सुनाई देगी, लेकिन वो कैसे सुन लेते थे, क्योंकि पता था कि मामा ऐसे धीरे ही बोलती है। कभी हमने बाबा को ऊंचा बोलते नहीं देखा। क्यों नहीं बोलते देखा? क्योंकि बाबा और मामा ने इस अभ्यास को बड़ा परिपक्व किया कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा। तो मैं ऐसा समझती हूं कि बच्ची में जब आप सभी आए हैं, इस समय थोड़ा अभ्यास करके हम जाएं कि हम कम से कम जितनी आवश्यकता है उतना ही बोल बोले, और जितना धीमे हो सकता है उतना धीमे बोले। क्योंकि अगर कहा जाए कि आप मौन रखना, तो मैं समझती हूँ मौन तो शायद नहीं हो पाएगा, थोड़े टाइम हो जाएगा लेकिन कमरे में जाके फिर बातें होंगी ही होंगी। लेकिन कम बोलें और धीरे बोलें, ये किस लिए? क्योंकि जब हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी उन्नति के लिए, और प्यारे बाबा को हमारा संकल्प भी पहुंच जाता है, तो बाबा को मालूम है कि मेरे बच्चे किस लिए आए हैं। और अगर बाबा ने आपको पर्सनली कुछ गाइड करना होगा, तो आपके कम बोल का जो समय होगा उस समय बाबा को आपको गाइडेंस दे सकें। और जब आप सब चर्चा आपस में नहीं कर रहे होंगे, तो बाबा को आपसे चर्चा करने का टाइम मिल जाएगा। अगर ये संकल्प रहेगा कि ये समय बाबा से मिलन मनाने का आए हैं, बाबा से गाइडेंस लेने के लिए हम आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके संकल्प भी बाबा पास पहुंचते हैं। कभी नहीं समझना जो बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, वो किस बात से कहते हैं वो भी हम और आप समझते हैं, कोई आप नए नहीं जो मैं रिपीट करूं, लेकिन बाबा को हमारे संकल्प भी पहुंचते हैं। मैं अपने बाबा के अनुभव की बात इन्होंने कही कि बाबा मामा के साथ रही, और मैं निजी अनुभव आपको शेयर करूं, तो मैं सुनाते सुनाते मैं अपना ये अनुभव कई बार सुनाती भी हूं। यहाँ मुझे याद है एक बार अपनी कमला नगर क्लास शुरू फर्स्ट सेंटर माउंट आबू के बाद कमला नगर स्थान पर ही खुला था, और उस सेंटर में ही मैं गुलजार दादी जी के साथ ही रहती थी, जगदीश प्राता जी भी रहते थे। मामा की तबीयत ठीक न होने के कारण गुलजार दादी जी बॉम्बे गए हुए थे क्योंकि ऑलमाइटी की आज्ञा थी कि मामा को केवल संदेशियां ही भोजन बनाकर खिलाएंगी जैसे बाबा आज्ञा देगा। तो इस प्रकार बाबा मामा की सेवा पर गुलजार दादी भी गए हुए थे और मैं पीछे सेवा केंद्र पर अकेली थी। और हमारे एक दिन होता है मंडे का दिन जबकि सब माताओं की विशेष धारणा की क्लास होती है। तो धारणा की क्लास का दिन था और प्रथम सेंटर होने के कारण वहाँ बहुत से बहनें, अधिकतर बहनें, बहुत थोड़े भाई जिनको ट्रांस का, ध्यान का, साक्षात्कार का वरदान मिला हुआ था और बहुतों को वरदान मिला हुआ था। कई सेवा केंद्र खुलते गए, वहाँ भोग लगाने के लिए संदेशी रूप में बहनें वहाँ वहाँ जाती थी और भोग लगाती थी। लेकिन कोई भी संदेश अगर हमको बाबा को देना है तो संदेशी को हम संदेश निमित्त बहन संदेश देती है और वो उस संदेश को लेकर बाबा के पास जाती थी और संदेश बाबा से लेकर आती थी। एक बार सोमवार की क्लास चल रही थी, सभी योग में बैठे थे, योग में संदेशियों को हम सामने बिठाते थे, लेकिन मुझे ना जाने क्या बात थी, मैं कई बार सुनाती हूँ कि मुझे वो बात आज तक याद नहीं आई, इस कदर विस्मृत हो गई कि किसी बात के कारण मेरा मन बहुत उदास था और मैं सोच रही थी कि बाबा आज धारणा की क्लास है, मेरी निज की अवस्था ही ठीक नहीं तो मैं धारणा की क्लास क्या कराऊंगी। क्लास लगभग 100-125 माताएं थी तो हॉल फुल भरा हुआ था, मैं बिल्कुल लास्ट में बैठी थी और विचारों में थी तो कुछ ही क्षणों में देखा तो मामा संदेशी के तन में प्रवेश हुई। उस समय मामा और बाबा का संदेशी के द्वारा पाठ चलता था और जब मामा आती थी तो मामा ऐसे करके बैठती थी तो पता चल जाता था कि मामा आ गई हैं। सभी आश्चर्य में हुए कि आज क्या है जो आज मामा आई हैं, और मुझे भी आया कि मैंने कोई संदेश नहीं दिया और संदेशी के तन में मामा कैसे आ गई। लेकिन मामा ने आकर के दृष्टि भी सबको नहीं दी, ऐसे थोड़ा निहारा बड़े प्यार से और फिर ऐसे किया जैसे किसी को इशारा कर रहे हों अपनी तरफ आने का। तो पता नहीं चल रहा था कि किसको मामा बुला रही हैं, इसलिए एक खड़ा हुआ तो मामा ने ऐसे कर दिया, इसका मतलब नहीं, वो बैठ जाता, फिर दूसरा खड़ा होता, फिर तीसरा खड़ा हुआ, पांच बहनें खड़ी हो चुकी थी और मामा ने ना किया। मुझे थोड़ा देहाभिमान आ रहा था क्योंकि मैं इस समय टीचर के रूप में हूँ और अगर मैं भी खड़ी हुई तो मामा कहीं ना कर दे तो कैसा लगेगा, लेकिन अंदर से मुझे आ रहा था कि मुझे थोड़ा ऐसे होना चाहिए, लगता है कि मुझे मामा शायद बुला रही हैं। लेकिन मैंने हिम्मत रख के थोड़ा ऐसा किया तो मामा ने ऐसे किया, थोड़ा मैं और ऊंची हुई तो मामा ने फिर मुझे ऐसे किया, तो मैं खड़ी हुई और मैं मामा के पास पहुंच गई। मामा ने बड़े प्यार से मुझे देखा और मेरे हाथ को ऐसे सहलाते हुए मामा ने कहा, मुझे बाबा ने आज विशेष आपके लिए भेजा है। अब मेरे मन में जो बात थी वो ना मैंने किसी जिज्ञासु से की, ना जगदीश भ्राता जी से की, क्योंकि वो भी अपने लिखने पढ़ने के काम में व्यस्त थे। मन ही मन सोच रही थी बाबा मैं क्या क्लास कराऊंगी। मेरी बात मेरे बाबा को वतन में पहुंच गई और पहुंची ही नहीं, लेकिन कैसे बाबा ने मुझ साधारण बच्ची के लिए खास मामा को संदेशी तन में वतन से भेजा और कहा, जरूर कहा होगा कि जाओ बच्ची से मिलकर आओ। और जब मामा ने मुझे आकर ऐसे प्यार से देखा और यही शब्द केवल उच्चारण किए, बाबा ने आज खास मुझे आपके लिए भेजा है। तो मेरी आंखें थोड़ी पानी आ गया और ऐसा लगा कि मामा मैं बिल्कुल ठीक हूं, बोला कुछ नहीं मैंने, लेकिन जैसे कि मेरे मन को इस कदर राहत मिली कि मेरी कौन सी वो बात थी जिसने मुझे उदास किया था, मुझे वो बात आज तक कभी याद नहीं आई, इस कदर भूल गई। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है, और मामा चली गई, बस इतना ही कहकर मेरे लिए यही बहुत था। और मुझे ऐसा आया कि मुझे बाबा ने वतन में याद किया। तो मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि आप सब भट्टी में आए हैं, ये ना समझो कि भट्टी का निमंत्रण मिला है, लेकिन प्यारे बाबा का निमंत्रण सदा समझना। आपके मन में कुछ भी बात होगी जिसको आप शायद किसी अन्य से शेयर नहीं कर सकते हो और मन ही मन द्वंद में होते हो, कुछ क्षणों के लिए उस द्वंद से मुक्त हो जाइए और बाबा से अपने मन की बात कह करके इतने शांत रह जाइए, जो बाबा का मिल रहा है वो लेते रहिए। बाबा आपको, आपके लिए क्या हल है अवश्य आपको देगा। हम कई बार चांस नहीं देते हैं बाबा के अनमोल महावाक्य या सजेशन देने का, जो बाबा हमको बात कह करके हमारी बात का समाधान हमको दे सके। हम अपनी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, कभी ये होता तो कैसा होगा, वह हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, इस प्रकार के प्रश्न उत्तर में अपने आप को फंसा कर रखते हैं और बुद्धि को खाली नहीं करते हैं। बुद्धि को खाली कर दीजिए, अपना संकल्प बाबा को दे दीजिए। ये ना कहिए कि अभी भी तो बताया नहीं, आज भी बताया नहीं, कल भी बताया नहीं, जाने का दिन आ गया अभी भी बताया नहीं। अब बाबा को अब बार बार रिमाइंड ना कराइए, आखिर नॉलेज फुल दाता है, रिमाइंड की जरूरत नहीं है। आपने अपना बता दिया, अब किस रूप में उन्होंने आपको गाइडेंस देनी है, कब देनी है, कौन सा समय होगा, वो जाने, उसमें अभी आपको बुद्धि नहीं चलानी। इतने लाइट रहना और इतने लाइट होकर जाना, ये है भट्टी में आने का फायदा। अगर हम भट्टी में आए और मन की कुछ बातें या उलझने उलझते रहे और उलझन को उलझते हुए साथ ही लेकर चले गए, तो हमने दिया क्या और लिया क्या। तो बाबा बच्चों को कहते हैं, मैं तुम्हारा वो लेता हूँ जो तुम्हें फिट नहीं बैठता है, जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं, उचित नहीं है, वो मैं तुम्हारा लेता हूँ। और ले करके कुछ दूं ना उसके बदले में, ऐसा नहीं होता है। संसारिक रूप में भी कोई कुछ किसी से लेता है तो उसको एहसान लगता है। बाबा भी कहते हैं, बच्चों से लेकर बाप उन्हें कुछ दे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों ने समय दिया, बाबा की आज्ञा को माना, और दाता इस समय आप सबकी सुनने के लिए आपको वतन से यहाँ बुलाया है कि बच्चे आओ, आपको क्या बात है आप मेरे से करना, मैं आपकी बात सुनूंगा और आपको राहत दूंगा। ऐसे प्यारे बाबा के निमंत्रण को लेकर के आप सब यहाँ पधारे हैं, इसलिए कभी नहीं भूल जाना कि हम यहाँ आए हैं डबल लाइट रहने के लिए। लाइट स्वरूप में रहिएगा और मन को हल्का कर दीजिएगा। एक बार बाबा को मन की बात कह दीजिए, बस इशारा ही काफी है। वैसे तो आपने सच्चे दिल से, मन से भी बाबा को कह दिया, जो मैं अपना कह रही हूँ कि बाबा मेरी अवस्था ही ठीक नहीं, मैंने इतना ही केवल मन में सोचा, तो मैं क्या धारणा की क्लास कराऊं, मैं बाबा की सेवा पर थी। और ये आप सबको मालूम है कि जब कोई नौकरी पर होता है और वो कोई बीमारी या कोई शरीर छूटता है, तो विशेष रूप से नौकरी पर इस बात का उसको एक एडिशन होता है कि उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना या उस पर खर्चा करना। बाबा भी कहते हैं जो बच्चे मेरी सेवा पर हैं, उन पर अटेंशन देना, हर क्षण उनकी हर बात को देखना, ये बाबा का काम है। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं। बाकी बाबा की बातें इन्होंने कहा कि मैं सुनाऊं, तो वो मैं सुनाने लगूं अगर बाबा की सब बातें, तो वो तो बहुत लंबे टाइम की आवश्यकता होती है। हाँ, ये कहूंगी कि उस प्यारे बाबा ने जिसने हमको दिव्य जन्म दिया है, जन्म ही नहीं दिया, उन्होंने हमको जीवन दिया है। जीवन ही नहीं दिया, जीवन जीने की कला सिखाई है, जीवन जीना कैसे है, ऐसा वो प्यारा बाबा है। और वो बाबा हमारे ही नहीं है, वो बाबा आप सबका भी बाबा है। दिखाई इन आंखों से नहीं देता है, लेकिन है क्या, कौन जाने। कहते हैं वही जाने जिसने उसका संग किया है, उसका रस चखा है, वही जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। प्यारे बाबा का मुझे एक अनुभव याद आ रहा है। बाबा कभी हम बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते थे, तो एक बार बाबा ऐसे ही जा रहे थे पहाड़ी की तरफ, इस तरफ जहां मिनिस्टर्स कॉटेज है पाड़न में, उस साइड में जा रहे थे। तो जाने से पूर्व घर से जब निकले तो काफी सारे बच्चे थे, पार्टी थी, तो बाबा ने फौरन खड़े हो गए। बाबा ने कहा, बच्चे तुम कौन हो? सभी बच्चे बाबा का मुंह देख रहे थे। बाबा ने कहा, मैं गैयों का गोपाल हूं, तुम गैया हो। गैयों को चराने के लिए गैयों का ग्वाला गैयों को लेकर जाता है, और जब वो गैया को लेकर जाता है तो ग्वाला आगे होता है और गैया पीछे होती हैं, या गैया आगे होती हैं और ग्वाला पीछे होता है। तो सब ने कहा, ग्वाला पीछे होता है, गैया आगे होती हैं। तब बाबा ने, क्योंकि बाबा आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे सारे बच्चे जा रहे थे, तो बाबा खड़े हो गए। आप खड़े होकर कहा, तुम सब आगे हो जाओ और ये बाबा पीछे चलेगा। तब बाप दादा पीछे चल रहे हैं, बच्चे आगे चल रहे थे, लेकिन सबका ध्यान तो पीछे बाबा की तरफ है। और बाबा के जो साथ साथ चल रहे थे बच्चे, दादियां थी, तो बाबा कुछ महावाक्य उच्चारण कर रहे थे। तो जो सब आगे चल रहे थे उन सब की गर्दन पीछे थी, चल आगे रहे थे गर्दन पीछे थी। तब बाबा ने कहा, बच्चे देखा, कहते हैं कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गैया घास चरना छोड़कर मुरली की तान सुनती थी, ये पूछ वाली गैया नहीं थी, ये तुम ही तो चेतन गैया हो। जबकि चल रहे हो आगे, लेकिन आगे चलते हुए सबके गर्दन पीछे है कि क्या मुरली बज रही है। तो बाबा इस प्रकार भक्ति की गाथाओं को स्पष्ट करते थे कि भक्ति में वो कृष्ण को ग्वाला सा दिखा देते हैं, पटका सा बांधा हुआ है, और कैसे वो गैयाओं को चराने के लिए गैयाओं को लेकर जंगल में जा रहा है। तो बाबा ने कहा, ये वो ग्वाला नहीं था, ये वो गैया नहीं थी, ये चेतन का स्वयं सर्वशक्तिवान इस तन में आया हुआ है, ये गैयों का ग्वाला बना है और तुम चेतन गैया हो। जब ग्वाले की मुरली चलती है तो तुम अपना घास चरना छोड़ करके मुरली की तान सुनती हो। तो बच्चे ये बातें तुम जानते हो, दुनिया वाले इन बातों को नहीं जानते। जिस पर बाबा हमेशा सुनाते हैं कि गैया घास खा करके जुगाली ना करे तो समझते हैं कि गैया बीमार है। ऐसे बाबा ने कहा, कई मेरे बच्चे समझते हैं हम बाबा के बच्चे बड़े तंदुरुस्त हैं, लेकिन ज्ञान सुनते जरूर हैं, सुनकर मनन चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, उस ज्ञान की गहनता में नहीं जाते हैं। तो स्पष्ट होता है कि गाय ज्ञान घास खाती है, लेकिन घास खाने के बाद उसकी जुगाली नहीं करती, मनन चिंतन नहीं करती, वो गैया बीमार है। नहीं तो मालिक को क्या मालूम कि मेरी गैया बीमार है या तंदुरुस्त है, वो कोई थर्मामीटर लगा के या पस तो नहीं देखता ना, वो तो इस प्रकार के चिन्ह से ही समझता है कि गाय तंदुरुस्त है या गाय बीमार। ऐसे बाबा ने कहा मेरी भी तुम गैया, जब ज्ञान घास खाती हो मनन चिंतन नहीं करती हो। जिसका मुझे याद आ रहा है, मुरली सुनी हमने, उस समय छोटा सा मधुबन होता था, तो जहाँ डिस्पेंसरी है एक छोटा सा कमरा होता था, तो हम कन्याएं कन्याएं थी, वहाँ गद्दे नीचे बिछा दिए गए थे, तो वहाँ 8-10 कन्याएं सब सो जाती थी। तो जब मुरली पूरी हुई तो हम कमरे में आ गए और आकर वहाँ लेट गए। इतने में बाबा भी कमरे में आ गए और बाबा ने आके कहा बच्चे मुरली सुनने के बाद लेटना नहीं होता है, मनन चिंतन करना होता है, कुछ मनन चिंतन करो। तो बाबा सिखाते थे और हम देखते थे कि हमारी मामा मुरली सुनने के बाद मनन चिंतन करती थी, कैसे चक्कर लगाती थी। और बाबा भी अपने कमरे में जब जाते थे तो साकार बाबा भी शिव बाबा के महावाक्य जो ब्रह्मा के मुख से चले थे वो बच्चों के साथ मनन चिंतन करते थे। और कई बार ये शब्द होता था चलो बैडमिंटन खेलेंगे, तो कमरे में बाबा के जाते थे और उस समय थोड़ी दादियां और थोड़ी दीदियां भी चली जाती थी और बाबा के साथ बैठते थे। आज बाबा ने क्या सुनाया, आज बाबा ने एक इतनी गहरी बात सुनाई। कुछ बातें दादियां कहती, कुछ बातें बाबा कहता, तो बाबा भी बाबा की सुनाई हुई बातों को रिपीट करता था, मनन करता था। हमेशा बाबा करके सिखाते थे, हर काम बाबा ने करके सिखाया। जिसका मैं अपना एक एग्जाम्पल कई बार बताती भी हूँ कि एक बार मैं बाबा के कमरे के बाहर, जो मुन्नी बहन का पांडव भवन में कमरा था, बाद में सोगाते भी रखती थी, बाबा के कमरे का गेट वहीं खुलता था, तो वहीं सोई हुई थी। और मैंने देखा कि बाबा कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल लैंप टेबल के ऊपर रखी है और उसके ऊपर एक बुर वाला टावल डाला हुआ है और बाबा नीचे कुछ लिख रहे हैं। तो क्लास के पश्चात जब बाबा कमरे में आए तब मैंने बाबा को कहा बाबा आप रात को कुछ लिख रहे थे, उस समय 4 बजे उठने का नियम नहीं होता था, क्योंकि बाबा का यही था योगी जीवन है, योग के समय की बात नहीं है। तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची रात नहीं थी वो, प्रातः था, 4 बजे का समय था वो। तब बाबा ने कहा कि अब बच्ची तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई लाइट के कारण। मैंने कहा नहीं बाबा मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई, क्योंकि बाबा ने टेबल लैंप के ऊपर टावल डाला हुआ था ताकि लाइट किसी को डिस्टर्ब न करे, और लिख रहे थे। मैंने कहा नहीं बाबा डिस्टर्ब नहीं हुई। बाबा ने कहा बच्ची कल बाबा ने होमवर्क दिया था, ये बाबा होमवर्क कर रहा था, अगर ये बाबा होमवर्क नहीं करेगा तो बच्चों से कैसे पूछेगा कि आपने ये होमवर्क किया, इसलिए पहले स्वयं करता हूं फिर बच्चों से पूछूंगा। तो आप देखिए किस प्रकार वो नंबर 1 शिक्षक के साथ साथ नंबर 1 विद्यार्थी बनकर रहे, और हम बच्चों को प्रैक्टिकल अपने जीवन से क्षण क्षण हर बात को सिखाते रहे। आज हम अपने आप से पूछें कितने होमवर्क बाबा ने हमको दे दिए, हम कितने होमवर्क करते। कभी बाबा कहते हैं मैं निराकारी आत्मा हूं और मैं फरिश्ता हूं, बच्चे ये दो ही दो प्रकार की रेस है। ये दो शब्दों को बार बार याद रखो, कभी बाबा कहते हैं पांच स्वरूपों को याद रखना, कभी बाबा तीन स्वरूपों को कहता है, फिर बार बार पूछता है कि अपना चार्ट रखते हो, सुनते हुए समझते हुए मालूम है कि बाबा कहता है फिर भी चार्ट नहीं रखते। तो बाबा कहता है कि फिर देखो बाबा ने जो होमवर्क दिया वो हमने कितना किया। इसलिए बाबा कहता है लास्ट पेपर तो एक सेकंड का होगा, पेपर तो आपके प्रतिदिन होते हैं, हर रोज मैं काम देता हूं और उस काम का नंबर लगाता चला जाता हूं। मुझे क्या लगाना है, आप उस काम के नंबर अपने ही लगाकर देख लीजिए कि कितना काम हमने किया है जो बाबा ने होमवर्क के रूप में दिया। लास्ट तो एक सेकंड का पेपर होगा, उसके नंबर ऐड होके फाइनल रिजल्ट होगा। तो आज हम अपने आप को ये समझकर यहां चलें कि हम विद्यार्थी हैं और ईश्वर हमारा टीचर, सुप्रीम टीचर है। प्रतिदिन जो हमको शिक्षा देते हैं या उनकी शिक्षाओं को विचार सागर मंथन कर जो भी भाई बहने हमें आगे पेश करते हैं, उन सब पर हम विचार करें और जो बाबा के दिए हुए होमवर्क हैं उनको रिवाइज करें, रियलाइज करें, जीवन में ढालें और अपने स्वरूप को निखारें, जिसके लिए आप सब आए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपने अमूल्य समय निकाला है अपने जीवन को अनमोल बनाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति।
अब दिल